نصیحتیں ہیں ان میں، حکمتیں ہیں ان میں، عبرتیں ہیں ان میں، قرآن کے سچے واقعات۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے بچوں اور بزرگوں، الحمدللہ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اپنا پروگرام قرآن پاک کے سچے واقعات کے ساتھ۔ جی ہاں، ہمارا آج کا موضوع ہے محراب مریم۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے، حصول برکت کے لیے، ترقی معرفت کے لیے، نزول رحمت کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ پاک کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے، وہ کون ہے، وہ کون خوش نصیب ہے؟ نمبر ایک، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کر دے۔ دوسرا شخص، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ اور تیسرا، مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج کے اس پروگرام میں ہم جو قرآنی واقعہ سنیں گے وہ ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک عظیم الشان کرامت۔ اس واقعے میں نہ صرف حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کی کرامت کا ذکر ہے، بلکہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی جس جگہ پر کرامت ظاہر ہوئی تھی، اس جگہ پر دعائیں کیسے قبول ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایک نبی علیہ السلام نے وہاں دعا مانگی تو دعا بھی قبول ہوئی۔ اللہ کے ایک نبی وہاں پر تشریف لے کر گئے، انہوں نے بھی وہاں پر دعا مانگی تو وہاں پر بھی دعا قبول ہوئی۔ یہ سب کچھ آج آپ کو سنائیں گے۔ آج کے پروگرام کا ٹاپک ہوگا محراب مریم۔ واقعہ یوں ہے کہ سب سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کا تعارف بیان کر دیں، تاکہ آپ کو ان کی شان و عظمت کے بارے میں، کہ وہ کتنی شان و عظمت والی خاتون تھی، اس کے بارے میں تھوڑا بہت معلوم ہو سکے۔ پھر اس کے بعد آپ کو ان کی عظیم الشان کرامت، کہ جس کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے، کہ وہ کرامت بیان کریں گے، اور آپ کو اس قرآن واقعے سے ملنے والا درس بھی بیان کریں گے، کیونکہ ہمیں درس لینا ہے نا، کہ اس واقعے میں ہمارے لیے درس کیا ہے۔ واقعہ صرف واقعہ نہیں، کہانی صرف کہانی نہیں، بلکہ اس کہانی کے اندر، اس واقعے کے اندر ہمیں کیا سیکھنے کو ملا۔
حضرت بی بی مریم کون تھی؟
آپ نے صحیح سوال کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے دور کی بات ہے، کہ ایک مرد صالح، نیک اور متقی شخص، جس کا نام تھا حضرت इमरान बिन मासान रजी अल्लाह अन्हु, आपका शुमार बनी इसराइल के सरदारों में भी होता था और आप रिश्ते में हजरत सैयदुना जकरिया अलैहिस्सलाम के हम जुल्फ भी थे, यानी इनकी जोजा मोहतरमा हजरत सैयदुना जकरिया अलैहिस्सलाम की जोजा मोहतरमा की बहन थी। दो बहनें और उनके जो शोर होते उसको हम जुल्फ कहते हैं, हम जुल्फ यानी उर्दू के अंदर हम जुल्फ कहते हैं, यानी आसान अंदाज में यूं कह ले कि दोनों आपस में रिश्ते के एतबार से साड़ू लगते थे। साड़ू समझते हैं ना, साड़ू लगते थे। खैर, शादी को सालों गुजर जाने के बाद भी हजरत इमरान रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ औलाद नहीं, यहाँ तक कि ये उम्र के उस हिस्से को पहुंच चुके थे कि जिसमें आमतौर पर औलाद होने की कोई उम्मीद नहीं होती, तो उम्र बढ़ जाती है, जब उम्र बढ़ जाएगी तो औलाद होने की उम्मीद जो है ये कम हो जाती है, लेकिन ये ना उम्मीद नहीं थे, अल्लाह की ज़ात पर इन्हें भरोसा था, अल्लाह की ज़ात पर इन्हें उम्मीद थी, रब की ज़ात पर पूरा भरोसा था और औलाद की ख्वाहिश भी थी कि अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दे। ऐसा होता भी है कि बंदे की उम्र बढ़ती जाती है, बे औलाद होते हैं, चाहे औरत हो या मर्द हो, वो हमेशा दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह नेक औलाद अता फरमा, या अल्लाह अच्छी औलाद अता फरमा, परहेजगार औलाद अता फरमा, यानी इनकी दुआएं चलती रहती है। एक वक्त आता है कि इंसान, हम जैसे लोग ना मायूस हो जाते हैं, मगर आपने मायूसी इख्तियार नहीं की, आप मायूस नहीं हुए, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखते हुए औलाद की ख्वाहिश करते रहे। एक दिन इनकी जौजा मोहतरमा जिनका नाम हजरत हन्ना रदी अल्लाह अन्हा था, उन्होंने बड़ी आजजी और इनकिसारी के साथ अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह अगर तू मुझे औलाद अता फरमा दे तो मैं अपनी औलाद को बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वफ कर दूंगी। कितनी अच्छी नीयत की थी इन्होंने कि मैं अपनी औलाद को बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वफ कर दूंगी। चुनाचे हन्ना जो थी उनको हमल जाहिर हो गया, और जिस वक्त हमल जाहिर हुआ, औलाद की उम्मीद हुई, तो इनके जो शौहर थे ना इमरान, उनका इंतकाल हो गया। शब रोज गुजरते रहे, फिर एक दिन वो मौका भी आ गया, वो घड़ी आ गई, वो वक्त आ गया जो खुशी की घड़ी होती है कि औलाद जिसके लिए बरसों दुआएं मांगी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर में औलाद पैदा हुई। वो औलाद क्या थी? वो औलाद जो है वो बेटा नहीं था, बेटी थी, बीबी मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा जो आपके यहाँ पैदा हुई, जो कि हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम की वालिदा है, इनकी विलादत हुई।
हजरत बीबी मरियम जा फजाइल छा आहिन,
बीबी मरियम के फजाइल भी बहुत ज्यादा है, अल्लाह पाक ने हजरत बीबी मरियम को बड़ी शान अता फरमाई थी, आप बड़ी शान वाली थी, आपके सिवा किसी औरत का नाम कुरान में नहीं आया, बीबी मरियम के सिवा किसी का नाम कुरान में नहीं आया, और हर नौ मौलूद बच्चे को शैतान अपनी उंगली से छूता है, जो नया बच्चा पैदा होता है तो शैतान जो है ना अपनी उंगली उसको लगाता है, बच्चे को लगाता है, मगर आप बचपन ही से शैतान से महफूज रहीं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने इरशाद फरमाया कि कामिल खवातीन में बीबी मरियम का शुमार होता है, जो कामिल मुकम्मल खवातीन है। फरमाया अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने कि अपने ज़माने की औरतों में सबसे बेहतरीन मरियम बिनते इमरान है, यानी कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने भी आपकी तारीफ इरशाद फरमाई।
जब लड़की पैदा हुई तो मन्नत कैसे पूरी हुई?
जी जी, आपने भी सही कहा, आपका सवाल सही अच्छा है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब जहन में सवाल आते हैं ये इस बात की अलामत होती है कि बंदा गौर से सुन रहा है, पुरानी वाकिया है, और दूसरी बात यह कि आपको पता भी है कि इस पर यह सवाल बनता है, मैं वो सवाल भी करूँ। जैसा कि अभी आपने सवाल किया कि हजरत हन्ना ने तो औलाद को बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वफ कर दिया, मन्नत तो मानी थी, अब जबकि लड़की पैदा हुई तो मन्नत फिर किस तरह पूरी हुई? लड़का हो तो अल्लाह के घर की खिदमत के लिए वफ हो जाता है, अब ये बेटी पैदा हुई, लड़की पैदा हुई, तो ये सवाल भी सही है आपका कि मन्नत किस तरीके से पूरी हुई। जी हाँ बिल्कुल पूरी की, जी हाँ बिल्कुल पूरी की। हजरत हन्ना ने विलादत के बाद बीबी मरियम को एक कपड़े में लपेट कर बैतुल मुकद्दस के उलमा के सामने रख दिया, कहा कि मेरी बेटी है जिसे मैंने अल्लाह की इबादत और बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वफ कर दिया। अब इतनी बड़ी बात कि बेटी को वफ कर दिया, अगरचे लड़कियां इस खिदमत की सलाहियत नहीं रखती मगर चूंकि मैं इसे वफ कर चुकी हूँ, माँ ये कह रही है कि मैं इसको वफ कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इसे लौटाकर घर भी नहीं ले जा सकती। अल्लाह के नाम पर जो दे दिया, जो चीज़ हम अल्लाह के नाम पे देते हैं दोबारा लेते नहीं है, लिहाजा आप हजरात मेरी ये नज़र कबूल फरमा लीजिए। हजरत ज़करिया ने यह फरमाया कि मैं इस बच्चे की किफालत का सबसे ज़्यादा हकदार हूँ क्योंकि मैं इस बच्ची का खालू हूँ, हम जिसको मासा है मासा खालू हूँ। तो मामला इस पर ख़त्म हुआ कि चलो कुरा अंदाजी की जाती है कि कौन इस बच्चे की किफालत करेगा। चुनाचे कुरा में जो ड्रॉ निकाला गया तो कुरा के अंदर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ही का नाम निकल पड़ा और यूं हजरत बीवी मरियम जो है रदियल्लाहु ताला अन्हा ये हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की किफालत में चली गई।
मेहराब मरियम का क्या मतलब है?
कहा जाता है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस के ऊपर जो फ्लोर बना हुआ था वह एक कमरा बनाया जो कि मस्जिद के फर्श से थोड़ा सा ऊंचा था। फिर क्या हुआ कि वहां से उस बच्ची यानी बीबी मरियम रदियल्लाहु अन्हा को पहुंचा दिया गया, कभी खाने का वक़्त तो खाना पहुंचा दिया जाता, पानी की ज़रूरत होती तो पानी पहुंचा दिया जाता था, या सिवाय आपके और कोई नहीं जाता था, यानी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के अलावा वहां पर कोई नहीं जाता था। खाने पीने वगैरह का सामान और दीगर सामान ज़रूरत जो होता है वो भी आप ही ले जाते थे और वापसी पर तमाम दरवाजे बंद करके ताला लगा कर वापस आ जाते थे क्योंकि औरत जाती बच्ची जाती उसकी हिफाजत उसकी असमत उसकी इज्जत इसकी भी हिफाजत करनी थी। तफासिर में लिखा है कि हजरत सैयदतुना मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा दूसरे बच्चों की बनिस्बत बहुत तेजी के साथ बड़ी होती है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आप एक दिन में इतना बढ़ती थी कि जितना एक बच्चा एक साल में बढ़ता है, यानी अल्लाह पाक की मशीयत देखिए कि अल्लाह पाक जिनकी हिफाजत का जिम्मा ले ले। चुनाचे चंद ही दिनों में हजरत मरियम हजरत ज़करिया के बनाए हुए उसी कमरे में पली और बड़ी और वही अल्लाह पाक की इबादत क्या करते थे। लिहाजा जिस जगह आपकी परवरिश हुई जिस जगह आप बड़ी हुई जहां पर आपने अपनी जिंदगी के अय्याम गुजारे जिंदगी के दिन गुजारे तो वो जगह जो है उसको क्या कहते हैं? मेहराब। सवाल क्या 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 था? मेहराब मरियम के हवाले से तो मेहराब मरियम इसको कहते हैं।
मेहराब मरियम में बीबी मरियम की कौन सी करामत जाहिर हुई थी?
माशाल्लाह आप लोग सही तवज्जो दे रहे हैं, आप लोग सुन भी रहे हैं। चंद ही दिनों में मेहराब मरियम में एक करामात नमूदार हुई कि आपके पास जन्नत से बेमौसम के फल आना शुरू हो गया क्योंकि बच्ची होती है तो फीड करती है दूध पिलाया जाता है और जैसे उम्र बढ़ी खाने पीने की उम्र हुई तो उस वक्त क्या हुआ मेहराब मरियम में कुदरती तौर पर ताजा फल पड़े होते थे।
अंकल मेहराब मरियम क्या होता है?
जी माशाल्लाह आप भी सुन रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी अच्छी बात पूछी आपने। मेहराब मरियम क्या होता है? मेहराब मरियम वो जगह होती है कि जहाँ बीबी मरियम पली बढ़ी और फिर जिस जगह को इबादत के लिए आपने पसंद फरमाया था जिस जगह पर आप इबादत किया करती थी उसको मेहराब मरियम कहते हैं।
अंकल बेमौसम के फल क्या होते हैं?
वाह, बेमौसम के फल वो होते हैं कि जैसे आम गर्मियों में आते हैं, अगर ये आम सर्दियों में आए तो ये बेमौसम का फल हो गया है। और फिर ये जन्नती फल दे कि जो बेमौसम भी थे और जन्नती फल दे, यानी सर्दियों में गर्मियों के और गर्मियों में सर्दियों के फल जन्नत से आना शुरू हो गए। रिवायत के मुताबिक बीबी मरियम ने किसी औरत को दूध नहीं पिया था, बल्कि ज़करिया अलैहिस्सलाम जो है ये आपके लिए खाने पीने का सामान लाया करते थे, मगर अल्लाह की जानिब से उन पर ये इनाम हुआ कि उनके लिए जन्नत से बेमौसम के फल आना शुरू हो गए थे। कितनी बड़ी सादत की बात है। हजरत सैयदुना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अनुमा से मरवी है कि जन्नत के फल होते थे, और कहा गया है कि इस बच्ची ने किसी औरत का दूध नहीं पिया, बल्कि ये फल उसके लिए दूध का बदल थे, दूध की जगह फल आ गए थे और दूध का बदल थे। अब बच्ची तो छोटी थी, मगर जहां बच्चा एक साल में बड़ा होता था, बीबी मरियम एक दिन में उतना हो जाते थे, यानी कि आपकी उम्र जल्दी जल्दी बढ़ती चली गई। जब आपकी उम्र बढ़ना शुरू हो गई तो जन्नत से आपके लिए फल आना भी शुरू हो गए, क्योंकि उसके अंदर दूध की तासीर थी, दूध की उसके अंदर तासीर थी, और वो फल खाते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह बीबी मरियम जो है वो बढ़ना शुरू हो गए।
बेमौसम फल देकर हजरत ज़करिया ने क्या कहा?
एक मरतबा हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब बीबी मरियम के मेहराब में पहुंचे, जब बेमौसम के फल देखे, तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये फल कहाँ से आए?
चल मैं बताऊं।
जी बेटा बताओ, बेमौसम के फल कहाँ से आए?
जन्नत से।
माशाल्लाह देखें, बच्चा भी बड़े गौर से सुन रहा है, तवज्जो है बच्चे की भी माशाल्लाह से, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी पता चल गया कि बच्चे भी होशियार होते हैं माशाल्लाह, समझदार होते हैं, और बच्चों को इसी कुरानी वाकया सुनाने चाहिए। जब बच्चा कुरानी वाकया सुनेगा तो बच्चे का जहन भी खुलेगा, बच्चा पढ़ने में और मजीद अपनी दिलचस्पी का इजहार करेगा। जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम वहाँ पर गए बीबी मरियम के हुजरे के अंदर, देखा बेमौसम के फल पड़े हुए, फिर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे भी नेमत अता फरमा, औलाद अता फरमा, तो अल्लाह पाक ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के घर में औलाद अता फरमाई। हजरत यहया अलैहिस्सलाम की विलादत जो है अल्हम्दुलिल्लाह ज़करिया अलैहिस्सलाम के घर में हुई। अब ये कुरानी वाकया है ना, इससे हमें दर्स भी मिलता है, सीखने को मिलता है। वो क्या हमें सीखने को मिला कि करामाते औलिया हक है, जो अल्लाह के वली हैं इनकी करामात हमारे उलमा बयान फरमाते हैं, ये करामात का इनकार नहीं करना चाहिए। जो बुज़ुर्ग हैं जिनको अल्लाह पाक ने अपनी करामात से नवाजा हुआ है, तो वो अल्लाह की अता से करामात दिखाते हैं, तो अल्लाह की अता से उन्होंने करामात दिखाई, तो करामात जो ये हक है, जैसे बीबी मरियम के हुजरे के अंदर बेमौसम के फल पड़े हुए थे, ये भी आपकी एक करामत थी। चुनाचे कोई अकल वाला इनका इनकार नहीं कर सकता, कि कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी समझ में नहीं आती। करामत कहते ही उसी को कि जो इंसानी अकल में ना है, क्योंकि आप बेमौसम के फल, वो भी जन्नती, वो बीबी मरियम के मेहराब में पड़े हुए, जब बीबी मरियम के मेहराब में जन्नत के फल देखे तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पहुंचाया नहीं था, तो आपको तशवीश हुई कि फल कहाँ से आए, क्या मेरे बगैर कोई और भी यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर आपकी करामत का जहूर हुआ, बीबी मरियम की करामत जाहिर हुई कि अल्लाह पाक ने आपको वहां पर बेमौसम के फल दिए, फिर आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी कि ये जगह इतनी मुकद्दस है, इबादत की जगह इतनी मोतबिर है, बीबी मरियम की इबादत की जगह थी, तो यहाँ पर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि या अल्लाह औलाद अता फरमा, अल्लाह पाक ने औलाद अता फरमाई, तो ये भी एक करामत है कि आपने जिस जगह पर दुआ मांगी मुतबरिक जगह थी, बाबरकत जगह थी। इसी तरह जब भी दुआ करें तो खुलूस नीयत और सिद्क के दिल से दुआ करें, यानी कि कामिल अल्लाह पाक पर भरोसा कि मैं जो अल्लाह की बारगाह से मांग रहा हूँ अल्लाह पाक देने पर कादिर है, औलाद अल्लाह पाक देने पर कादिर है, रोजी अल्लाह पाक देने पर कादिर है, जो मांगे अल्लाह पाक से मांगे, तो खुलूस नीयत से मांगे। जब हम खुलूस नीयत से अल्लाह की बारगाह में मांगेंगे तो अल्लाह देने पर कादिर है और अल्लाह पाक अता फरमाता है। यानी इस वाक्य से मैं दर्स मिला ना कि जब भी हम दुआ मांगे, जैसा हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने محراب مریم میں دعا مانگی, اللہ پاک نے اس دعا کو قبول فرمایا. خلوص نیت سے دعا مانگی تھی, اللہ نے قبول فرمائی, دعا پوری ہو گئی. کیونکہ خلوص نیت اور صدق کے دل سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبولیت کے قریب تر ہوتی ہے, وہ قبولیت کا درجہ پاتی ہے. حضرت حنا کی دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہو گئی. حضرت حنا نے بھی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی نا, خلوص نیت سے دعا مانگی تھی, یا اللہ اگر تو مجھے اولاد عطا فرما دے تو میں اپنی اس اولاد کو بیت المقدس یعنی کہ تیرے مقدس گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. حضرت حنا کا یہ اخلاص تھا کہ آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی, آپ کی دعا بھی اللہ پاک نے قبول فرمائے. تو ہم بھی جب دعا مانگے تو اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ اللہ دینے پر قادر ہے, انشاءاللہ تعالی میری دعا بھی اللہ قبول فرما لے گا. یعنی کہ دل سے دعا مانگی جاتی ہے, جو دل سے مانگی جاتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, پر نہیں رکھتی مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ والے یا اللہ والیاں جس جگہ عبادت کریں الحمدللہ وہ جگہ خود بخود اللہ پاک کی بارگاہ میں متبرک ہو جاتی ہے. الحمدللہ ایسے بہت ساری باتیں ہمیں اس واقعہ سے مل سکتی ہیں اگر ہم غور و خوض کریں اس واقعے میں, مزید ہم اپنا ذہن لگائیں تو اس واقعے میں ہمیں اور بھی نصیحت آموز بابرکت باتیں سمجھنے کو ملے گی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآنی واقعات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی واقعات سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھتے رہیے مدنی چینل.
نصیحتیں ہیں ان میں, حکمتیں ہیں ان میں, عبرتیں ہیں ان میں, قرآن کے سچے واقعات.